ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आ जाती पावन दिन या तिथि है, गुरु पूर्णिमा है और साथ ही साथ श्रील सनातन गोस्वामी पाद का तिरोभाव दिवस है। और गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है कि जिस दिन व्यास देव का प्राकट्य हुआ था। तो आज का वो दिन है जिस दिन एक जो शिष्य है अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु के जो कार्यकलाप है उनका स्मरण करते हैं और इस साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक गुरु का जो समर्पण उनके आध्यात्मिक गुरु के प्रति है हाँ उसको स्मरण करते हुए है, गुरु की जो शरणागति है उसमें तीव्रता लाते हैं। तो ब्रज में तो ये जो आज का दिन है हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रज में आते हैं, आगमन करते हैं और विशेष रूप से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु का पूजन करते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी के कारण है क्योंकि सनातन गोस्वामी ने आज के दिन ही गोवर्धन में अपना जो दिव्य देह है उसको त्याग किया था, जिसके कारण ब्रजवासी अत्यधिक दुखी हो गए थे। सनातन गोस्वामी के प्रति उनका अतीव प्रेम था जिसके कारण आज के दिन जो ब्रजवासी गण है वो मुड़िया पूर्णिमा मनाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करके अपना मुंडन आदि करते हैं और सनातन गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके प्रति शरणागति की जो भावना है उसको बढ़ाते हैं। तो आज हम सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय पार्षद थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने आचरण से ब्रज में भगवत भक्ति करने की जो भावना है और जो लालसा है कृष्ण सेवा की उसकी शिक्षा हमें अपने आचरण से प्रदान की है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र। यदि हम अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, दिन प्रतिदिन वैष्णव के चरित्र का श्रवण करना होगा, वैष्णव के चरित्र का मनन करना होगा और उनके चरित्र की चर्चा करनी होगी। तो आप सब सनातन गोस्वामी से परिचित हैं, हमेशा हम इन आचार्यों के बारे में श्रवण करते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है उसका लाभ उठाते हुए उनकी कृपा आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उनका गुणगान करके जो हमारे शुद्धि के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो आप लोग आगे आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से जो सनातन गोस्वामी हैं उनके बारे में कई सारा वर्णन हमारे जो आचार्य गण हैं उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में प्रदान किया है। अधिकतर सनातन गोस्वामी के बारे में हमें प्राप्त होता है चैतन्य चरितामृत और भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथ में। तो सनातन गोस्वामी ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं षड गोस्वामियों में से, जिनके बारे में कहा गया है कि उनका जो आविर्भाव है 1488 में हुआ था रूप गोस्वामी के पूर्व, और कर्नाट प्रदेश का जो सारस्वत ब्राह्मण परिवार था जिनके जिनमें उनका जन्म हुआ था, उनके पिता का नाम था श्री कुमार देव और माता का नाम था श्री रेवती। तो इन दोनों के तीन संतान हुए, एक का नाम था श्री अमर, एक का नाम था श्री संतोष और एक का नाम था श्री वल्लभ। तो जो अमर थे वो आगे चलकर सनातन गोस्वामी कहलाए, और जो श्री संतोष थे वो रूप गोस्वामी कहलाए, और जो श्री वल्लभ थे जिनको अनुपम के नाम से जाना जाता है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी को रत्न कहा होगा तो ये दो वैष्णवास थे, एक थे रूप गोस्वामी और दूसरे थे सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने जब दक्षिण भारत की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं, और गोपाल भट्ट को अपना 4 महीने सहवास संग प्रदान करके गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पुना कहे आचिरे जाई वृंदावन मिली बे दुर्लभ रत्न रूप सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे गोपाल आगे चलकर तुम वृंदावन चले जाना, और वृंदावन जाकर क्या मिलेगा तुम्हें, दो दुर्लभ रत्न मिलेंगे। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जैसे महान वैष्णवों का संग जीवन में प्राप्त करना अति दुर्लभ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि अरे जो मर्त प्राणी है इस जगत का मनुष्य, उसके लिए सर्वोच्च आशीर्वाद, सर्वोच्च जो बुन है वर है वो क्या है, महानतम भगवत भक्ति संघर्ष, भगवान के उच्चतम भक्तों का संग लाभ प्राप्त होना, और ऐसा संग लाभ बहुत दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मिरलिबे दुर्लभ रत्न रूप सनातन। चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन को हमेशा रत्न कहा करते थे। तो रत्न तो सरलता से अवेलेबल नहीं होता, और कई जगह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे सेनापति है वहां वृंदावन में, और वो दो सेनापति हैं, कौन है, एक है रूप गोस्वामी और दूसरे है सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी विलाप करते थे कि मेरी माता की आज्ञा से मैं जगन्नाथपुरी में निवास कर रहा हूं, मैं वृंदावन नहीं जा सकता, मैं अपने माता के वचन से बंधा हूं, लेकिन हे सनातन हे रूप आप वृंदावन चले जाओ, और जो मेरा हृदय है वृंदावन वहां मैं कई सारे कार्य करना चाहता हूं, वो आप दोनों के माध्यम से कराऊंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आचार्य गण है ये साधारण नहीं है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करिमाने सेजाय ब्रजेंद्र सुत पाश। जिस व्यक्ति की ये भावना होगी कि महाप्रभु के जो भक्त है ना वो साधारण नहीं है, महाप्रभु के जो नित्य संगी है वो असाधारण है, भगवान के नित्य पार्षद है, अप्राकृत है और इस मर्त्य जगत से वो नहीं है, ऐसी भावना जिनकी होगी उन वैष्णवों के प्रति उन आचार्यों के प्रति, तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में कहते हैं सेजाय ब्रजेंद्र सुत पाश, ऐसे लोग कृष्ण के पास निश्चित रूप से जाएंगे। इसलिए तो महाप्रभु के भक्तों का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए देवकी नंदन दास जो हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं वो कहते हैं कि कैसे हैं ये महाप्रभु के भक्त, कहते कि ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए एक ही भक्त काफी है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, अरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति हमारे महाप्रभु के एक एक भक्त के अंदर है, इतने सामर्थ्यवान है। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके जो भक्त हैं वह असाधारण है। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक ही भक्त काफी हुए हैं जिन्होंने पूरे संसार को तार दिया है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जो बचपन से ही उनका अनुराग वृंदावन के प्रति और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के प्रति था, बल्कि वो जब अपने निवास स्थान में रहते थे आगे चलकर राम केली में, आज भी वो राम केली है मालदा के पास, जहां राम केली इसलिए नाम है कि भगवान राम और सीता देवी अपने वनवास काल में वहां गए थे और कई प्रकार की जो लीलाएं हैं उन्होंने प्रकट की थी। तो ऐसे रूप और सनातन का वास्तव्य राम केली में रहा और राम केली में रहकर वो पूर्ण रूपेण वृंदावन की चेतना में, वृंदावन की भावना में निमग्न रहते थे। वो ब्रजवासी हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि तीन प्रकार के ब्रजवासी हैं। एक है कि जिसने ब्रज में जन्म लिया है और कृष्ण की अनन्य सेवा में नियुक्त है। दूसरा व्यक्ति है जो ब्रज के बाहर जन्म लिया है लेकिन ब्रज में आकर भगवान की अनन्य भावना से पूर्ण शरणागति के साथ सेवा में लगा हुआ है। और तीसरा व्यक्ति ये सोच सकते हैं हम कि अरे हमारा जन्म भी नहीं हुआ है और हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि वृंदावन में हमें वास मिला हो। तो लेकिन तीसरा ब्रजवासी, प्रभुपाद कहते हर कोई ब्रजवासी हो सकता है, हाँ अपने स्थान में रहते हुए हैं। ब्रज के बाहर जन्म लिया है लेकिन ब्रज के बाहर रहकर गुरु की आज्ञा से ब्रज की सेवा में जो लगा हुआ है वो भी क्या है, ब्रजवासी है। नित्य रूप से ब्रज के स्मरण आदि में सेवा में नियुक्त है। तो उसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बल्कि रामकेली में रहते थे बंगाल में, लेकिन पूर्णतः वृंदावन चेतना में थे शुरुआत से ही, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। रामकेली को उन्होंने वृंदावन ही बनाया था। आज भी आप रामकेली में जाते हो तो कई सारे कुंड हैं, वहां राधा कुंड है, श्याम कुंड है, अन्य कई सारे कुंड हैं, कदम्ब के वृक्ष हैं सब जगह, तमाल के वृक्ष हैं, कई लीला स्थलियां हैं वहां जो रूप गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी ने प्रकट कराए थे और पूर्ण रूपेण वृंदावन की भावना में वहां निवास करते थे। बल्कि शुरुआत से ही रूप गोस्वामी और विशेषता सनातन गोस्वामी ने वहां राधारमन, राधा मदन मोहन की स्थापना की थी और उनकी सेवा में वो नियुक्त हुए थे। इसलिए भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं, श्री सनातने राति अद्भुत चरित श्रीमद भागवते जार अतिशय प्रीत। वो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी के चरित्र के बारे में क्या कहूं, इतना अलौकिक है, अद्भुत है कि ऐसे सनातन गोस्वामी के हृदय में श्रीमद भागवतम के प्रति गहरा अनुराग या अत्यधिक प्रीति थी। और हमारे संप्रदाय में हम देखेंगे कि ये तीन चीजों के लिए हमारे महानतम वैष्णवों का बहुत गहरा अनुराग है। एक है भगवान नाम के प्रति, दूसरा है श्रीमद् भागवतम के प्रति और तीसरा है वैष्णवों की सेवा के प्रति। और हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने इस आंदोलन में इन तीन चीजों को पूर्णतः लगा दिया है और अपने सारी शिक्षाओं के माध्यम से हमें अवगत कराया है कि हमारा भी जो अनुराग है, आध्यात्मिक जीवन में हम अग्रसर होना चाहते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम का प्रति, भागवतम के प्रति अनुराग विकसित करना चाहिए, भगवान नाम के प्रति अनुराग विकसित करना चाहिए और वैष्णव की सेवा और उनके संग के प्रति अनुराग विकसित करना चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी बाल्यकाल से ही उनको विग्रह से अनुराग था, श्रीमद् भागवतम से और वृंदावन आदि से अनुराग था। एक बार सनातन गोस्वामी जब राम केली में ही थे तो उनको स्वप्न आया। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान कर रहा है। और जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठे और सुबह उठते हैं स्वप्न भंग होता है और वो अपनी पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनके जो निवास स्थल था उसके द्वार पर ही एक ब्राह्मण खड़ा था। आचार्यगण कहते हैं अरे वो ब्राह्मण नहीं, साक्षात कृष्ण ही थे ब्राह्मण के रूप में, जो अपने हाथ में श्रीमद् भागवतम की प्रति लेकर आए थे और सनातन गोस्वामी को पुकार रहे थे दरवाजे से, हे सनातन आप आओ और इस श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करो। सनातन गोस्वामी तुरंत उठते हैं और जाते हैं और बड़े आदर सम्मान के साथ श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करते हैं। और वो ब्राह्मण कहता है कि इस ग्रंथ का, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करोगे तो तुम अपने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। तब से सनातन गोस्वामी ने किसी अन्य ग्रंथ को हाथ नहीं लगाया है। सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में डूबने लगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करने लगे भक्तों के संग में। तो आगे चलकर उन्होंने वैष्णव तोषणी जो अपनी टीका आदि है वो प्रदान की और कई प्रकार की भागवतम के प्रति उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी हम आज पढ़ते हैं। एक बार वो भागवतम के प्रति प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मद एक बंदो मद संगी मद गुरो मद महादन मद निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमस्तुते। कई सारी प्रार्थनाएं हैं जो सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के प्रति अर्पित की हैं। और भागवतम मानो उनका प्राण था और गौड़िया वैष्णव का प्राण है श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु के हर जीवन के स्तर में देखते हैं तो हर समय में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को आगे रखा है। बाल्यकाल में भी जब बालक की रुचि किस चीज में होती है वो देखना होता है तो कई चीजें सामने रखती और बालक को छोड़ा जाता है, तो अपने घुटने पर चलते हुए बालक जाके जो उसकी रुचि है उसको पकड़ लेता है। तो महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को पकड़कर ऐसे आलिंगन किया था, नवदीप में भी श्रवण करते थे और जगन्नाथपुरी गए वहां भी भागवतम श्रवण करते थे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में ये जो श्रीमद् भागवतम है मदैक बंधु मेरा एकमात्र बंधु है, मत संगी मेरा एकमात्र संगी है, मत गुरु श्रीमद् भागवतम मेरा गुरु है, मन महादनः श्रीमद् भागवतम मेरा क्या है एकमात्र धन है, मन निस्तारकः श्रीमद् भागवतम मेरा उद्धार करने वाला है, मेरा निस्तार करने वाला है, मद भाग्य मेरा भाग्य ही है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम जो मुझे सर्वोच्च आनंद प्रदान करता है ऐसे श्रीमद् भागवतम को मैं नमस्कार करता हूं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी शुरुआत से ही श्रीमद् भागवतम के प्रति उनका गहरा अनुराग था। इतना अनुराग था कि वो जब गौड़ देश में नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उस समय उनका नाम साकर मल्लिक था। साकर का अर्थ होता है छोटा और मल्लिक का अर्थ होता है राजा। मानो वो छोटे राजा थे वहां के, सारा जो कारोबार है जो नवाब हुसैन है वो सनातन गोस्वामी के ऊपर सौंप कर चले जाते थे और सनातन गोस्वामी सारा कार्य का निर्वहन करते थे। इतना अधिक विश्वास उस मुस्लिम शासक को था सनातन गोस्वामी के प्रति। तो सनातन गोस्वामी वो मुस्लिम शासक के यहां मंत्री के रूप में कार्य करते थे लेकिन उनका जो हृदय है सदैव वो कार्य को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के सन्निकट जाने की भावना थी। कब ऐसा अवसर मिलेगा कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त होगा, सदैव इस भावना में वो रहते थे। और वो मुस्लिम शासक की इसलिए सेवा करते थे क्योंकि वो मुस्लिम शासक वैष्णवों को पीड़ा प्रदान करता था, कष्ट देता था। केवल वैष्णवों को कष्ट पीड़ा आदि ना हो, दुख आदि ना प्राप्त हो, सरलता से भागवत धर्म का वो पालन करते रहे, इसलिए रूप सनातन ने मुस्लिम शासक के यहां नौकरी स्वीकार की थी। तो ऐसे मानो उन वैष्णवों के लिए स्वयं वो कष्ट स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जिनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने दैन्य को प्रकाशित किया था, दीनता क्या होती है, दीनहीन भावना क्या होती है, विनम्रता का भाव क्या होता है, उसको मानो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया था। चैतन्य महाप्रभु अपने एक एक भक्त से एक एक शिक्षा देते थे, एक एक भक्त के माध्यम से एक एक शिक्षा को प्रकाशित करते थे। जैसे कृष्णदास कविराज कहते हैं, रामानंद द्वारे कंदर पेर दर्पनाशे, दामोदर द्वारे निरपेक्ष परकाशे। कहते रामानंद के द्वारा कंदर्प जो कामदेव है उसको भी घमंड था, उसके घमंड का विनाश करते हैं। रामानंद राय इस संसार के भौतिक आकर्षण से मोहित नहीं होते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं लकड़ी की स्त्री भी देखूं तो आकर्षित हो सकता हूं, लेकिन रामानंद राय नहीं, वो अप्राकृत है, दिव्य है। तो ऐसे वो कहते हैं कि इस प्रकार से रामानंद के द्वारा वो कंदर्प जो कामदेव है उसके अहंकार का विनाश कर देते हैं। दामोदर द्वारे निरपेक्ष प्रकाशे, दामोदर द्वारा निरपेक्षता का जो भाव है वो प्रकाशित करते हैं। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जाना इल, सनातन रूप द्वारे दैन्य प्रकाशिल। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं हरिदास ठाकुर के द्वारा जो सहिष्णुता है, सहन करने की जो भावना है, उसको प्रकाशित किया है। कितना कष्ट हरिदास ठाकुर ने सहन किया है, जब 22 बाजारों में उनको पीटा जा रहा था, जल्लाद उनको मार रहे थे 22 बाजारों में ले लेकर, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरा प्राण चला जाए, खंड खंड हय जदी जाओ मोर प्राण, तबे तुरा वदने छाड़ी हरिना, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, खंड खंड हो जाए ये देह, लेकिन जो कृष्ण का नाम है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन रूप द्वारे दैन्य प्रकाशिल, और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के द्वारा, सनातन गोस्वामी के द्वारा ये दैन्यता के जो भाव है उसको प्रकाशित किया है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु की ये जो शिक्षा है वो अति महत्वपूर्ण है। त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सार है। चैतन्य महाप्रभु ये सारमय शिक्षा को प्रदान करते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राम केली में निवास कर रहे थे, मुस्लिम शासक के यहां अपना कार्य कर रहे थे, निरंतर भागवत अध्ययन कर रहे थे, और एक ही भावना उनके हृदय में होती थी, लालसा कि कब चैतन्य महाप्रभु को मिले, कब चैतन्य महाप्रभु को मिले। मानो जो मछली है जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते। इसलिए भक्ति रत्नाकर कहता है, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विहरे नदिया, सदा उत्कंठित तार दर्शन लागिया। कहते सदा उत्कंठित, ये तो राम केली में थे और महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था, महाप्रभु नवदीप में वास कर रहे थे, तो सदैव इनके हृदय में उत्कंठा थी कि कब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करे, कब चैतन्य महाप्रभु को मिलने का मौका हमें मिले। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को लेटर लिखते थे और वो लेटर सची माता के हाथ में पहुंचता था और चैतन्य महाप्रभु नवदीप में उसको पढ़ा करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय को नवदीप में थे तभी जान गए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनके जो पत्र लिखा था उन्होंने रूप सनातन ने, उसके प्रत्युत्तर में एक उत्तर लिखे, एक श्लोक लिख के उन्होंने भेज दिया, और उस श्लोक का अर्थ यही था, परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा परव्यसनिनी नारी, मतलब किसी स्त्री को दूसरे पुरुष का व्यसन हो जाता है, पर पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है, और वो व्यग्रते व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, घर कार्य में व्यस्त होती है लेकिन फिर भी क्या करती है, अपना जो प्रेमी है उसके संग का, जो संगति का जो रस है, वो व्यस्त होने के बावजूद भी आस्वादन करती रहती है अपने मन आदि में, हृदय में। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रूप सनातन, आप वहां हो लेकिन आपका रूप जो आपका हृदय आदि है वो कृष्ण आदि का स्मरण करने में नियुक्त कराओ। तो रूप सनातन समझते हैं और महाप्रभु का इंतजार राम के लिए में करते रहते हैं। बल्कि सनातन गोस्वामी ने तो एक बार ऐसे कर दिया, श्रीमद् भागवतम के अनुराग के प्रति तो हद ही कर दी। राजा को कहा कि मैं बीमार हूं, 15-20 दिन के लिए बीमार हूं, एक महीने के लिए बीमार हूं, और उन्होंने अपने राजपाट जो भी कार्य है सनातन गोस्वामी ने उससे छुट्टी ले ली और अपने घर में बैठ गए। वहां बैठकर क्या करते थे, कई सारे ब्राह्मणों को बुलाया, वैष्णवों को बुलाया और केवल दिन रात श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते थे, भागवतम की व्याख्या करते थे, भागवतम को वैष्णवों से सुना करते थे, ये निरंतर कर रहे थे। और राजा को पता था कि सनातन गोस्वामी बीमार है। राजा ने देखा अरे बहुत दिनों से आया नहीं है, तो उन्होंने एक वैद्य को भेजा कि जाओ देखो कैसे है उनका जो स्वास्थ्य है। तो वैद्य जब जाता है सनातन गोस्वामी के घर में, महल में, तो देखता है कि सनातन गोस्वामी तो बीमार नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम सुनने बीमारी का बहाना बनाकर भागवतम सुनने में नियुक्त है। और हमारा उल्टा है, हम भागवत न सुनने के लिए बीमारी का बहाना बनाते हैं और गायब होते हैं, और वहां सनातन गोस्वामी बीमारी का बहाना बनाकर दिन रात भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो राजा आता है और राजा क्या करता है, उनको जेल में डाल देता है। उन्होंने कहा कि आप ये सब कार्य करो, ये सब छोड़ दो और मेरे इस कार्य में लगो। तो इन्होंने उसको स्वीकारा नहीं। सनातन गोस्वामी से पहले रूप गोस्वामी अपने छोटे भ्राता अनुपम को लेकर वो स्थान छोड़कर वृंदावन की ओर निकल गए थे। बल्कि उससे पहले चैतन्य महाप्रभु उनको मिले थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और जगन्नाथपुरी गए, और चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए नवद्वीप होते हुए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु कुलिया ग्राम से राम के लिए आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी से हजारों हजारों लोग फॉलो कर रहे थे, महाप्रभु के पीछे चल रहे थे। कृष्णदास कविराज कहते कि महाप्रभु जब वृंदावन की ओर यहां निकल रहे थे जगन्नाथपुरी बंगाल से, तो उनके पीछे लोग जा रहे थे और जहां जहां महाप्रभु के चरण पड़े थे वहां की मिट्टी निकाल निकाल के लेके जा रहे थे। और वो जहां जहां मिट्टी निकाली वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कई किलोमीटर तक वो गड्ढे थे जहां चैतन्य महाप्रभु चले थे। तो महाप्रभु अकेले नहीं थे, महाप्रभु के कई सारे भक्तगण, उसके अलावा कई सारे ग्रामों से गांवों से असंख्य लोग महाप्रभु के संग निकले थे। और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप होते हुए राम के लिए आते हैं और राम के लिए आकर एक तमाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और वहां बैठकर रूप सनातन को जब पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन राम केली में हुआ है, बल्कि राम केली में आने का चैतन्य महाप्रभु का कोई अन्य उद्देश्य नहीं था, महाप्रभु का उद्देश्य तो केवल रूप सनातन को मिलना था और उनको वृंदावन भेजना था। महाप्रभु ने जितना भी यात्राएं की है उन यात्राओं में चैतन्य महाप्रभु ने केवल अपने विशेष विशेष भक्तों को वहां से चुन चुन के उठाया है और सबको वृंदावन भेजा है। जैसे दक्षिण भारत की यात्रा में गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिले थे, उनको कहा तुम्हें वृंदावन जाना है। और अभी इस वृंदावन की जो प्रथम यात्रा है नवद्वीप से होते हुए वहां चैतन्य महाप्रभु अभी राम केली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु राम केली में जब बैठे तमाल वृक्ष के नीचे, आज भी आप राम केली में जाते हो तो वही सारे कुंड हैं, वहां वही मदन मोहन के विग्रह हैं जिनकी आराधना सनातन गोस्वामी करते थे। आज भी वो तमाल वृक्ष है जिसके नीचे रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी, नामकरण किया था और महाप्रभु ने उस वृक्ष के नीचे अपने चरण रखे थे। तो चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के नीचे बैठते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो जो मुस्लिम राजा था वो चकित हो जाता है, कि ये कैसा व्यक्ति है। वो राजा कहता है बिना दाने तलोक जार पाछे हाय सही तो गोसाइया यहाँ जानी हनिच्छाए। वो कहते हैं जो बिना दान दिए बिना पैसे दिए इतने लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं जिसके संग में चल रहे हैं ये साधारण नहीं है। सही तो गोसाइया, गोसाइया मीन्स वो मुस्लिम शासक कहता है ये भगवान का दूत है। हाँ निश्चित प्रकार से ये भगवान का दूत है ऐसा वो सोचता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु राम किले में रहते हैं। तो राम किले में जो उस मुस्लिम शासक था नवाब हुसैन, उन्होंने कहा ये जो सन्यासी आया है उसको जो करना है करने दो। और वो अपने एक दूसरे अधिकारी थे केशव छत्री, वो मुस्लिम शासक पूछता है कि इसके साथ ये जो सन्यासी है इनके साथ हजारों हजारों लोग हैं। तो केशव छत्री कहते नहीं नहीं इस सन्यासी के साथ ज्यादा लोग नहीं है, ये तीर्थों का भ्रमण करते हुए जा रहा है सन्यासी जिनके साथ चार पांच लोग हैं। तो केशव छत्री ने एक व्यक्ति को भेजा, महाप्रभु को मैसेज दिया कि आप शीघ्रता से ये स्थान छोड़कर जाइए क्योंकि इस मुस्लिम शासक का कोई भरोसा नहीं है। हाँ तो इस प्रकार से वो कहते हैं। और वो जो मुस्लिम शासक है फिर रूप गोस्वामी को पूछता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वो कहता है आप इस सन्यासी के बारे में बताओ। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप तो राजा हो और राजा भगवान का ही प्रतिनिधि है, आप मुझसे अधिक जानते हो। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी उस मुस्लिम शासक को कहते हैं। तो वो मुस्लिम शासक रूप गोस्वामी को कहता है राजा कहे सुन मोर मने जई लाय साक्षात ईश्वर यहाँ नाही कसंशय। तो वो राजा कहता है मेरा मन कह रहा है कि ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये कौन है, साक्षात ईश्वर है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो राम केली में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अपना वेश आदि बदल कर साधारण वेश धारण करते हुए, क्योंकि वो तो राजमंत्री थे बहुत ऐश्वर्यमय वेशभूषा धारण करते थे, लेकिन जब अब महाप्रभु को मिलना था तो मध्य रात्रि में, क्योंकि वो दिन में नहीं मिल सकते थे, तो मध्य रात्रि में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपना वेश आदि परिवर्तन करते हैं बदलते हैं और दोनों दांत में तिनका धारण करते हैं और गले में एक वस्त्र लपेटते हैं और दीनतावश चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आते हैं। और महाप्रभु के समक्ष आने से पूर्व वो हरिदास ठाकुर और चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरते हैं। वो कहते कि आप कृपा कीजिए जिसके द्वारा मुझे महाप्रभु के चरण प्राप्त हो, ये वास्तव में उचित विधि है भगवान को प्राप्त करने के लिए। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, कि आध्यात्मिक गुरु या वैष्णव की कृपा से ही भगवत कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, ये वास्तव में रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी अपने आचरण से दिखाते हैं। और किस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच करना है इस भावना को प्रकट करते हैं, दीनहीनता का भाव हृदय में धारण करते हुए रूप सनातन दांत में तिनका लेते हैं, गले में वस्त्र डालते हैं और रोते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको उठाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब उठाते हैं तो सनातन गोस्वामी कहते हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय नीच जाति नीच संगी करी नीच काज तोमार अग्रेते प्रभु कहिते वासिलाज पतित पावन हेतु तोमार अवतार आमा बई जगते पतित नाही आर। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हे दयामय श्री चैतन्य देव आप पतितों को पावन करने वाले हो, मैं तो नीच जाति है नीच लोगों का संग में कर रहा हूं और नीच लोगों का कार्य में मैं लगा हूं, आपके सामने आने में मुझे लज्जा महसूस हो रही है। पतित पावन हेतु तव अवतार, हे महाप्रभु दयामय आपका जो अवतार है पतितों को पावन करने के लिए हुआ है। अमा भाई जगते पतित नहीं यार, वो कहते हैं हे प्रभु मुझसे अधिक पतित इस संसार में कोई अन्य नहीं है। और वास्तव में यही हमारे गौड़िया वैष्णव की पहचान है, उत्तम हैया अपना के माने अधम, जो उत्तम होने होते हुए भी स्वयं को अधम स्वीकार करता है, मानता है और गुरु और कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है लेकिन मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे सारे आचार्यों के चरित्र को हम देखते हैं, खोजते हैं, तो सब में ये भावना कूट कूट के भरी हुई है। हाँ, कि स्वयं को क्या है दीनहीन का जो भावना है, ये वैष्णवों की पहचान है। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कहते हैं, क्योंकि वो दीनता के मूर्तिमान रूप हैं सनातन गोस्वामी, वो कहते हैं कि हे प्रभु जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए आपको कोई ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि जगाई मदाई तो ब्राह्मण थे, नवदीप में वास था, उन्होंने कभी नीच पुरुषों की सेवा नहीं की, नीच कार्यों से उन्होंने कार्य नहीं किए हैं। उनका एक ही दोष था कि वो पाप कर्मों में सदा लिप्त रहते थे, लेकिन हे प्रभु पाप कर्म तो नामाभास से ही खत्म हो जाते हैं, कोई निंदा रूप से भी आपका नाम उच्चारण करता है तो उसके पाप आदि तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, हम तो उस जगाए मदाई से भी क्या है अधम है। ये भावना सनातन गोस्वामी की थी, जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुण अधम पतित पापी आमी दुई जान। वो कहते जगाई मदाई में करोड़ों करोड़ों गुण है, हमारी स्थिति क्या है हमें स्वयं में ही हजारों करोड़ों गुण दिखाई देते हैं और दूसरे भक्तों में कोई गुण दिखाई नहीं देता है, हमारी वो स्थिति है। तो लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देखो ये जगाई मदाई में करोड़ों करोड़ों गुण है लेकिन मुझ में हम में क्या है, हम तो अधम है, पतित है। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमर संगम। तो कहते हैं हम म्लेच्छ जाति के हैं, म्लेच्छ लोगों की सेवा में हैं, म्लेच्छ कार्य कर रहे हैं और गाय ब्राह्मणों से जो द्वेष करने वाले हैं मुस्लिम शासक, उनके हम सेवक बने हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। तो कहते हैं कि हे गौरांग देव आप मेरा उद्धार कीजिए। आमा उद्धार या जदि देखाओ निज बल पतित पावन नाम तबे से सफल। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं आपके अंदर उद्धार करने का कितना बल है आप दिखाओ, और तब पता चलेगा जब आप हमारा उद्धार करोगे। सनातन गोस्वामी कहते मेरा उद्धार करोगे तो आपका ये जो नाम है ना पतित पावन ये सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु के प्रति प्रार्थना करते हैं और वास्तव में इस प्रार्थना से दीनहीन भावना से पूर्णतः चैतन्य महाप्रभु का रूप सनातन ने क्या किया था, वशीभूत कर लिया था। बल्कि सनातन गोस्वामी कहते हैं हम तो बौने हैं लेकिन हम चांद को वामन होकर चांद को पकड़ना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुनि महाप्रभु कहे सुन दबि रखास तुमे दोई भाई मोर पुरातन दास आजी हाय ते दुहार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ तुमार दैन्य फाटे मोर मन। तो कहते हैं कि तुमे दुई भाई मोर पुरातन दास, आप मेरे शाश्वत सेवक हो और आपका आज से नाम होगा, क्योंकि रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास था और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आजी है ते तुम्हारा दोहारा नाम रूप सनातन, आपका नाम रूप होगा और हे सनातन हे साकर मल्लिक आपका नाम सनातन होगा। दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मन, आप इस दीनता की भावना को छोड़ो, आपकी ये दीनता विनम्रता की भावना को देखकर मेरा हृदय भी फटा जा रहा है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त में विनम्रता की भावना को जब देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, गौड़ निकट आसिते मोर नाही प्रयोजन, तोमा दोहा देखिते मोर यहा आगमन। बंगाल या गौड़ आने का मेरा कोई अन्य प्रयोजन नहीं था, केवल आपसे मिलने के लिए मैं यहां आया हूं। तो चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन जाने का यह बाह्य कारण है, लेकिन अंतरंग कारण क्या था? रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी को मिलना था। तो ऐसे रूप सनातन महाप्रभु के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं और सनातन गोस्वामी और उनके मस्तक के ऊपर, सर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु अपने चरण रखते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहां उपस्थित सभी भक्तों को कहते हैं कि आप सब इनके ऊपर दयालु हो जाइए, और सभी भक्त हरि हरि का उच्चारण करते हैं, हरि हरि। तो इस प्रकार से पूरा जो राम केली है वह हरि हरि के उच्चारण में भर गया था। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे प्रभु, जार संगे चले यही लोक लक्ष कोटी, वृंदावन यात्रा रे नहे परिपाठी। वृंदावन कोई लाखों लाखों लोगों को जाने की ये परिपाटी नहीं है, सबको लेके चले जाओ। हाँ, वो कहते हैं सही उचित नहीं है। हाँ, तो आपको क्या है, ये लाखों लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इनका उनपे ऊपर सनातन आदि के ऊपर कृपा करते हैं, वहां से कनाई नटशाला जाते हैं। और रात्रि में सनातन गोस्वामी ने जो बोला था उस पर महाप्रभु विचार करने लगते हैं। विचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे, सनातन गोस्वामी ने सही बोला था, वृंदावन जाना है तो कैसे जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने क्या कहा था, एकाकी जाइब किंवा संगे एक जन, तबे से शोभये वृंदावने रगमन। तो महाप्रभु कहते, अरे सनातन ने कहा एकाकी जाओ, अकेले चले जाओ वृंदावन, और तभी वृंदावन जाना उचित होगा। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप वृंदावन चले जाइए। तो सनातन गोस्वामी से पूर्व रूप गोस्वामी वृंदावन के लिए आते हैं, और रूप गोस्वामी के पश्चात, क्योंकि सनातन गोस्वामी को भी उस मुस्लिम शासक ने जेल में डाल दिया था, और कैसे तो घूस आदि खिलाकर वो वहां से भाग के चले जाते हैं। एक सेवक ईशान को अपने साथ लेते हैं। जो सेवक ईशान था वो अकेले नहीं, उसने अपने साथ 8 जो है गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, अशरफिया लेके निकला था। और जब एक स्थान में आए जहां उनको बड़ा सा जंगल पार करना था, तो एक होटल था वहां रुके थे। तो वहां ये जैसे ही दोनों आए, सनातन गोस्वामी और ईशान, तो वो व्यक्ति बहुत उनकी सेवा करने लगा, उनको आदर देने लगा। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। जो अवश्य, जैसे ना कोई व्यक्ति स्तुति करता है, बहुत ज्यादा ही स्तुति करता है, तो आती स्तुति निंदार लक्षण, तो समझना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी ने सोचा, देखा सेवक को, कहते तुम्हारे जेब में कुछ है? वो कहते प्रभु मेरे जेब में तो 8 सोने के सिक्के हैं। साथ ही बोले उसने सनातन गोस्वामी को, कहते निकालो और इसके सामने रख दो। निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए। तो वो कहता है कि यदि आप नहीं भी देते ना, आज रात्रि में तो आप दोनों को मारने का पूरा प्लान था हमारा, हमें पता था। उसने एक ज्योतिषी रखा था, जो भी यात्री जाता है उसके जेब में, उसके बॉक्स में क्या क्या है वो सब पता करते थे। और उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने उनको वहां से वापस भेजा, अपने सेवक को जिसके पास एक सिक्का था, उसने कहा आप चले जाओ। सनातन गोस्वामी वहां से आगे आते हैं हाजीपुर नाम का स्थान, जहां वो अपने बहनोई से मिलते हैं, श्रीकांत से मिलते हैं, जो घोड़े खरीदने के लिए वहां आए थे। सनातन गोस्वामी बिल्कुल साधारण वेश थे, दाढ़ी उनका ऐसे लंबा बड़ा हुआ था मानो कोई फकीर है, मुस्लिम दरवेश है, ऐसे ही सनातन गोस्वामी लग रहे थे। और वो श्रीकांत ने बड़ा सा सुंदर ब्लैंकेट सनातन गोस्वामी को दिया, जिसको लेकर वो निकल पड़े। वाराणसी में पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस समय वृंदावन से होकर वाराणसी आए थे, और चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में निवास कर रहे थे, और सनातन गोस्वामी उस घर के आंगन में दरवाजे में जाकर बैठे हुए थे। तो वहां चैतन्य महाप्रभु अंदर थे, महाप्रभु ने देखा नहीं बाहर कोई है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा चंद्रशेखर जाओ, बाहर व्यक्ति एक वैष्णव आया है, उसको लेकर मेरे पास आओ। चंद्रशेखर बाहर जाता है, वैष्णव तो शिखा होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, कंठी होनी चाहिए, हाँ पूरा ऐसे लग ही नहीं रहा था कोई वैष्णव बाहर बैठा हुआ है। उन्होंने देखा प्रभु वैष्णव तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कोई दरवेश बाहर बैठा हुआ है, मुस्लिम जो दाढ़ी लंबी करके बैठा है। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप उनको अंदर बुलाओ। और जैसे सनातन गोस्वामी को चंद्रशेखर अंदर लाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ते ही सनातन गोस्वामी की ओर, ताहर अंग ने देखी प्रभु धैया आईला, तारे आलिंगन करे प्रेमा विष्ट हैला। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को सबसे ज्यादा आलिंगन किए है ना, वो सनातन गोस्वामी है। जगन्नाथपुरी में तो एक साल अपने पास रखा और प्रतिदिन जाकर उनका आलिंगन करते थे। हाँ तो ऐसे सनातन गोस्वामी को जब देखा तो महाप्रभु वाराणसी में दौड़ के वहां उनका आलिंगन करते हैं, प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी इतने विनम्र थे, वो कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरा स्पर्श नहीं कीजिए। सनातन गोस्वामी रोने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी रोने लगते हैं। और ये देखकर चंद्रशेखर आश्चर्य व्यक्त करता है कि अरे ये बाह्य रूप से ये लग रहा था ये वैष्णव नहीं है, इसलिए हम वैष्णव को पहचान नहीं सकते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, वैष्णव के कार्यकलापों को बड़ा से बड़ा पंडित व्यक्ति भी समझ नहीं सकता है, इसलिए वैष्णव को कौन समझ सकता है। उतने ही ऊंचे कैलिबर का जो दूसरा वैष्णव है वही दूसरे वैष्णव की परम स्थिति को समझ सकता है। तो इसलिए महाप्रभु हमें आगाह करते हैं कि हमें वैष्णव अपराध आदि से बचना चाहिए। वैष्णव को साधारण, क्योंकि हम वैष्णव को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, हमारी अप्राकृत दृष्टि नहीं है, प्राकृत दृष्टि है। भौतिक दृष्टि से वैष्णव का आकलन करते हैं, देखते हैं और उनसे व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जब उनका स्पर्श किया और चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर सही से साफ करने लगे, हाँ तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन कहते हैं कि प्रभु आप मेरा स्पर्श नहीं कीजिए। महाप्रभु कहते तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा तो किसका स्पर्श करूंगा। महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रिते, अरे सनातन तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से आपने आपको मैं पवित्र कर रहा हूं, आपके भक्ति बल के कारण पूरे ब्रह्मांड को वो तुम क्या कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो। इतना सामर्थ्य है एक वैष्णव का। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जो विदुर जी हैं सारे तीर्थों का भ्रमण करके आ गए थे हस्तिनापुर वापस, तो उन्होंने कहा भगवद विदा भागवता, उन्होंने कहा तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांतस्तेन गदाब्रता, कि आप जैसे महान वैष्णव को तीर्थों का भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ आदि में जाकर स्नान आदि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में तो गदाभृत भगवान निवास करते हैं। आप जाते हैं और जहां जहां आप जाते हैं उन तीर्थों को पवित्र करने का सामर्थ्य आपके पास है। आप केवल तीर्थों को, नदियों को, आप सबको पवित्र करने के लिए भ्रमण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज विदुर को कहते हैं, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे स्पर्श से मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड आप पवित्र करने का सामर्थ्य बल तुम में है। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण, सर्वेंद्रिय फल ये शास्त्र निरूपण। और वास्तव में महाप्रभु ने कहा तोमा देखी, हाँ इन आंखों का फल केवल यही है वैष्णवों को देखना, तोमा स्पर्शी आपका स्पर्श करना, गाई तोमार गुण, सर्वेंद्रिय फल सारे इंद्रियों का यही फल है कि वैष्णवों का गुणगान करना, वैष्णव का स्पर्श करना, वैष्णवों का दर्शन करना। फिर चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों से एक श्लोक कोट करते हैं, अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम हे तनो फलम त्वादृश गात्र संगः। जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। तो वास्तव में ऐसे भागवत गान वैष्णव गान इस संसार में दुर्लभ है। महाप्रभु कहते औक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही, इन आंखों का सर्वश्रेष्ठ फल ही है वैष्णवों का दर्शन करना। हाँ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं या नरोत्तम दास ठाकुर कि जब हम गंगा के निकट जाकर स्नान करके पवित्र होता है लेकिन वैष्णव का दर्शन पवित्र करा यही तो हमारा गुण। भक्तों का दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं लेकिन हम दर्शन करते ही हमें द्वेष आता है। हाँ, कुछ दुर्गुण हम दिखा कुछ दुर्गुण ढूंढने लगते हैं भक्तों में वैष्णवों में। तो ऐसे कहा गया है महानतम जो वैष्णव है उनका दर्शन करना ही नाखों का फल है और ये शरीर उनका संग करना हमारे शरीर का फल है। और जिह्वा फलम तो आदर्श तो आदृश कीर्तनम ही, हमारे जिह्वा का फल क्या है वैष्णवों का गुणगान करना। जितना अधिक वैष्णवों का गुणगान करेंगे उतना अधिक हमारा अस्तित्व को हम पवित्र करेंगे और कृष्ण को प्रसन्न या कृपा को आकर्षित करेंगे। वैष्णवों का गुणगान करने मात्र से कृष्ण की कृपा हमारे वर होने लगती है, आकर्षित हो जाती है जो कृपा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा महाप्रभु ने, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु आप दयामय हो। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन जो दयामय कृष्ण है उन्होंने तुम्हारा जो उद्धार है महारौरव से किया है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं आप जो कृष्ण की बात कह रहे हो ना उन कृष्ण को मैं नहीं जानता हूं। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी अमर उद्धार है तू तुमार कृपा मानी। तो कहते हम तो कृष्ण को नहीं जानते कृष्ण की कृपा को नहीं जानते लेकिन मैं ये जानता हूं आपकी कृपा से मेरा क्या हुआ है उद्धार हुआ है। तो उसी प्रकार से मानो देखते हैं भागवतम में प्रहलाद महाराज ने भी वही कहा कि मेरा उद्धार तो नारद मुनि ने किया है, मैं तो ऐसे कुएं में गिरा हुआ था नारद मुनि की कृपा से मेरा उद्धार हुआ है और मेरा अभी कर्तव्य है नारद मुनि की सेवा करना। उसी प्रकार से हम तो महाप्रभु को नहीं जानते गोस्वामियों को नहीं जानते महाकृष्ण को नहीं जानते ब्रज आदि की कृपा को नहीं जानते, हम श्रील प्रभुपाद की कृपा को जानते हैं। प्रभुपाद की कृपा से मानो हम यहां बैठे हैं, प्रभुपाद के त्याग आदि उनकी तपस्या का ये प्रभाव है उनकी कृपा का ये प्रभाव है जिनके द्वारा हमारे जैसे पति जीव भी कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकारे हैं और अपना उद्धार करने लगे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के प्रति सनातन गोस्वामी ये वक्तव्य करते हैं और देखते हैं कि महाप्रभु बड़े कृपामय हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के बारे में तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, उनका जो आख्यान है बड़ा विशेष है शिक्षाप्रद है और प्रेरणा प्रदान करने वाला है आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु अपने सदैव निकट रखते हैं और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वहां वाराणसी में उपदेश देते हैं। बल्कि इतने विद्वान होने के बावजूद भी सारे शास्त्रों में वो प्रवीण थे लेकिन सनातन गोस्वामी वाराणसी में महाप्रभु को कहते हैं आपन आर हिता हित किछु नाही जानी। ग्राम में व्यवहार पंडित ताय सत्य मानी कि मैं अपने हित और अहित को नहीं जानता हूं, सारे लोग मुझे पंडित कहते हैं लेकिन मैं मूर्ख हूं, इसलिए हे महाप्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे बताइए के आमी केमा के आमी केने आमाय जारे तापत्र है यहां नहीं जाने के मने हित है कि मैं कौन हूं मैं क्यों कष्ट प्राप्त कर रहा हूं और मेरा हित क्या है आप मुझे बताइए साध्य साधन तत्व आदि की व्याख्या कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई दिनों तक सनातन गोस्वामी को लगभग एक महीने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 5 अध्यायों में वर्णित है। जिसमें सनातन गोस्वामी को जीव तत्व है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन और कई सारे तत्वों की व्याख्या की और उनको हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है कंपाइल करने के लिए भी प्रेरित किया। और जो आत्माराम मुनयो जो श्लोक है उसकी 61 बार जो अर्थ है वो भी उनको सुनाए और शिक्षा देकर उनको कहा कि आप वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाकर चार कार्य करना, एक है लुप्त लीला स्थली जो है कृष्ण की उनका उद्धार करो, दूसरा है शुद्ध भक्ति की सिद्धांत की स्थापना करो और तीसरा है कृष्ण के विग्रहों को प्रकट कराओ ब्रज में और चौथा है वैष्णव स्मृति ग्रंथों का संकलन करो और वैष्णव सदाचार का प्रचार करो। तो ऐसे सनातन गोस्वामी यहाँ आते हैं और ब्रज में निवास करते हैं द्वादश आदित्य टीला में और वहां से सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं। उनकी लगभग 90 साल के हुए थे, 70 या 90 साल, तब तक प्रतिदिन वृंदावन से गोवर्धन जाते थे और परिक्रमा करते थे, उसके पश्चात मथुरा में जाकर मधुकरी करके थे, फिर वापस आते थे। यह ऐसा व्रत पूरे जीवन भर था, ऐसा व्रत उनका था पूरे अपने जीवन भर उन्होंने वो निभाया कि कृष्ण द्रवित हो गए, परिक्रमा करते करते कभी गिर रहे हैं सनातन गोस्वामी लेकिन अपना व्रत कंप्लीट करने के लिए वो परिक्रमा कंटिन्यू कर रहे हैं, कृष्ण द्रवित होकर प्रकट हो जाते हैं। सनातन अभी परिक्रमा मत करो, आवश्यकता नहीं है, हाँ तुम तो नित्य सिद्ध पार्षद हो, नहीं नहीं हाँ मैं परिक्रमा करूंगा। तो भगवान तुरंत एक शिला के ऊपर खड़े हो जाते हैं जहां अपनी जो उनके हाथ में छड़ी थी और भगवान अपने चरण चिन्ह उसके ऊपर रखते हैं और वो जो शिला है उनको प्रदान करते हैं और कहते हैं अभी इतनी बड़ी परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, इस शिला की परिक्रमा करो गोवर्धन शिला की तो तुम्हारा परिक्रमा पूर्ण होगा। तो सनातन गोस्वामी वो शिला की परिक्रमा करते थे लेकिन अपना व्रत उन्होंने कंटिन्यू किया और आज वो शिला हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में है और हम भी लाभ उठाते परिक्रमा करने का लेकिन हम भूल जाते, हम ना सनातन गोस्वामी है ना हमें वो आदेश मिला है चार बार परिक्रमा करो तो आपको भी लाभ मिलेगा, तो वो सनातन गोस्वामी के लिए था। तो हमें तो गोवर्धन जाना चाहिए और वहां जाकर क्या करनी चाहिए, पूर्ण परिक्रमा करनी चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी विशेष विशेष आचार्य हैं जिनके बारे में और अधिक श्रवण करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि आविर्भाव और तिरोभाव के दिन जो ये वैष्णव आचार्य हैं अत्यधिक दयाद्र कृपामय हो जाते हैं और आज के दिन वो डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं और अपनी कृपा का वर्षाव भक्तों के ऊपर करते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने गोवर्धन के तलहटी में मानसी गंगा के तट पर ही अपना देह त्याग किया था और जिनका संग प्राप्त करने के लिए शिवजी वहां बैठे हैं चकलेश्वर महादेव, जब उनको मच्छरों ने तंग किया सनातन कहते अभी यहां से चला जाता वृंदावन, शिवजी कहते मच्छर यहां से जाएंगे लेकिन तुम यहां रहोगे। हाँ मतलब सनातन गोस्वामी ऐसे थे जिनका संग लाभ करने के लिए बड़े बड़े देवतागण लालायित रहते थे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने वहां वास किया और ब्रज में सबसे अधिक प्रसिद्ध गोस्वामी कोई थे तो वो सनातन गोस्वामी थे। ब्रज के हर घर घर में घर घर की समस्या उनको पता थी, हर चाहे पति पत्नी हो कोई, वो सब अपनी समस्या आकर सनातन गोस्वामी को बताते थे और सनातन गोस्वामी ब्रज में भ्रमण कर करके सबकी खुशहाली पूछा करते थे, खेतों में क्या लगाया है क्या हो रहा है सब कुछ हर चीज की चर्चा करते थे। इतना इतने ब्रजवासी उनको प्रेम करते थे कि जब सनातन गोस्वामी वो उनके गुरु थे, ब्रज के आचार्य गुरु थे, इतना बड़ा स्थान था सनातन गोस्वामी का। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने जो मानसी गंगा के तट पर शरीर छोड़ा तो सारे वैष्णवगण आते हैं और उनके दिव्य देह को लेकर मानसी गंगा का परिक्रमा करते हैं और लाखों की संख्या में ब्रजवासी वहां मानसी गंगा में उपस्थित हो जाते हैं, रोने लगते हैं सनातन गोस्वामी के विरह में। ऐसे कहा गया है आध्यात्मिक गुरु शरीर त्यागता है तो शिष्य को क्रंदन करना चाहिए। हाँ तो ऐसे हजारों लोग रोने लगे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी के विरह में, उनके देह को लेकर मानसी गंगा में स्नान कराया, परिक्रमा कराया और उनकी यथावत पूजा की और सबने मुंडन किया उस दिन। हजारों हजारों लोगों ने मुंडन किया, इसलिए आज का जो दिन ये जो मुड़िया पूर्णिमा के रूप में ब्रज में प्रसिद्ध है। और फिर सनातन गोस्वामी, क्योंकि उनके आराध्य देव यहां है मदन मोहन, हाँ, जिनके निकट वो निवास करना चाहते थे, तो उनके दिव्य देह को लाया वैष्णव ने और मदन मोहन के चरणों में ही उनको समाधिस्थ किया। और हमेशा के लिए सनातन गोस्वामी मदन मोहन की सेवा में नियुक्त हो गए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी विशेष विशेष आचार्य हैं, और श्रील प्रभुपाद ने सनातन गोस्वामी से हमें परिचित किया है। तो आज के दिन सनातन गोस्वामी से कृपा की याचना करनी चाहिए, और भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि के प्रति और गुरु वैष्णव की सेवा के प्रति आसक्ति की भावना हमारे हृदय में भी वृद्धिंगत हो, ऐसी उनसे याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के, श्रील कृष्ण द्वापायन व्यास आविर्भाव तिथि के, श्रील भक्तिचारु महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, नितय गौर प्रेमानंदे।